हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदांश ने जैसे ही लिफाफे से तस्वीरें निकाली, दक्ष और आर्ना की तस्वीरें देखकर वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। किंतु अगले ही पल दक्ष की स्थिति सोचकर उसका खून खौल उठा। तभी रिदांश के केबिन पर किसी ने दस्तक दी। रिदांश ने उसे अंदर आने को कहा। एक आदमी काले सूट में हाथ में एक फाइल लिए केबिन में दाखिल हुआ और वो फाइल रिदांश की ओर बढ़ा दी। शख्स, ये लीजिए सर, कल जिस लड़की की जानकारी आपने मांगी थी, इसमें उसकी सारी जानकारी है। रिदांश, फाइल लेते हुए, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। एजेंट, ओके, थैंक यू सर। रिदांश ने पहली बार अपनी गाड़ी के आगे आर्ना को देखा था। उसी समय उसने अपने लोगों को उसकी सारी जानकारी निकालने को कहा था, परंतु आज उसकी जानकारी मिलने से पहले ही दक्ष और आर्ना की वे तस्वीरें उसके सामने आ गईं, जिन्हें देखकर रिदांश के मन में आर्ना के लिए केवल गुस्सा और नफ़रत पैदा हो गए थे। इन तस्वीरों में आर्ना और दक्ष एक साथ हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे थे। एक तस्वीर में दक्ष आर्ना के हाथ में कोई तोहफा पहना रहा था, तो एक तस्वीर में उसके माथे को चूम रहा था। एक तस्वीर में आर्ना उसके हाथ दोनों हाथों से थामकर मुस्कुराते हुए तस्वीर क्लिक करवा रही थी। जितनी भी तस्वीरें थीं, सब हल्की धुंधली थीं और सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई थीं, परंतु उन्हें देखने भर से ही साफ मालूम पड़ रहा था कि इन तस्वीरों में दिखने वाले लोग दक्ष और आर्ना ही थे। रिदांश ने आर्ना की फाइल खोलकर पढ़ी और कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई। आर्ना की तस्वीर देखते हुए, अब बस देखते रहो मिस आर्ना कपूर, कि मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाता हूँ और कैसे तुम्हें पल पल जिल्लत और बेइज्जती की मौत मारता हूँ। एक पल बाद उसने कुमार को फ़ोन किया। कुमार, जल्द से जल्द कपूर इंडस्ट्रीज़ का नामो निशान भी मार्केट से हट जाना चाहिए। एक ही रात में उसकी सारी प्रतिष्ठा और शेयर मिट्टी में मिल जाने चाहिए, समझ में आया? कुमार ने यस बॉस कहकर अपना सिर हिला दिया। गुड, अब अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर रिदांश ने फ़ोन रख दिया और दुष्ट भाव से आर्ना की तस्वीर देखने लगा। अब बस देखते रहो जानू। फ्लैशबैक एंड। बीती बातों को याद करते हुए अनिकेत और रिदांश दोनों ही दुखी थे, परंतु फ़र्क सिर्फ इतना था कि जहां अनिकेत के चेहरे के भाव उसके दिल का हाल साफ बयां कर रहे थे, वहीं रिदांश के शांत भाव से उसके दिल का हाल जानना उतना ही मुश्किल था। कुछ देर बाद रिदांश और अनिकेत अपने घरों के लिए निकल गए। घर पहुंचकर रिदांश ने कमरे में सोई हुई आर्ना को देखा, जो उस वक्त सोते हुए बहुत ही मासूम और भोली लग रही थी। रिदांश सख्त भाव से मन में इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखकर कोई भी धोखा खा जाए, परंतु असल में इसके पीछे छिपे घिनौने चेहरे की हकीकत जान ले तो सिवाय नफ़रत के इस चेहरे को और कुछ नसीब नहीं होगा। कुछ देर बाद रिदांश ने कपड़े बदले और आर्ना के बगल में बिस्तर पर आकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसे भी नींद आ गई। अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर आर्ना और रिदांश ही छाए हुए थे। हर अखबार में उनकी और उनके चुंबन की ही चर्चा थी। कुछ लोगों के लिए ये बात चौंकाने वाली थी तो कुछ के लिए ये खुशी भरी हैरानी की बात थी। दो दिन गुजर गए थे और रिदांश ने उस दिन के बाद से ही आर्ना को पूरी तरह नज़रअंदाज किया था और दोनों ने ही बीते दो दिन एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं कहा था। अगले दिन सुबह ही रिदांश ऑफिस के लिए निकल गया और कुमार से मिस्टर कपूर के बारे में जानकारी मांगी। रिदांश, क्या खबर है? कुमार, मिस्टर कपूर जिस दिन यहाँ आए थे उस दिन के बाद से ही हर रोज हर बड़े छोटे बिजनेसमैन से मदद के लिए गुहार लगाते हुए मिल रहे हैं, परंतु आपके आदेश के बाद किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आपके खिलाफ जाकर उसकी मदद करे? अच्छा, और सुनिश्चित करो कि वो बस यूं ही दर दर की ठोकरें खाए मगर उसे कहीं से भी राहत न मिल पाए। यस बॉस। इतना कहकर कुमार वहाँ से चला गया और रिदांश अपने फ़ोन में अपनी माँ के साथ आर्ना को सीसीटीवी फुटेज में देखने लगा, जो उसकी माँ को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कोई कहानी सुना रही थी, जिसे सुनकर कल्पना जी बच्चों की तरह खुश हो रही थीं। इसी बीच आर्ना के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, जिसे जब उसने खोलकर देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक ही परेशानी के भाव हो गए, जिन्हें नोटिस करते हुए रिदांश भी आर्ना को संदेह भरी नज़रों से देखने लगा। दूसरी तरफ आज फिर कुछ दिन बाद आर्ना को उसी अनजान शख्स का मैसेज आया था, जिसे पढ़कर आर्ना परेशान हो गई। सॉरी मेरी जान, थोड़े दिनों से कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था, मतलब हम दोनों के बीच की सारी दीवारों को जड़ से ही तोड़कर बर्बाद करने के इंतज़ाम में लगा था। आज तुम्हारी और उस रिदांश के किस करते हुए फोटो देखकर मेरा खून खौल उठा और मेरा मन किया कि मैं उसी वक्त अपने हाथों से उसका खून कर दूं। परंतु मैंने भावनाओं पर जैसे तैसे काबू किया, क्योंकि मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। खैर, आई नो कि तुमने बीते दिनों मुझे बहुत याद किया होगा, पर बस थोड़ा सा सब्र और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आशिक, योर डेस्टिनी। आरना ये मैसेज पढ़कर एक बार फिर परेशान हो उठी और कल्पना जी को सुलाकर वापस अपने कमरे में आ गई। प्रिशा और नम्या शॉपिंग के लिए गए थे, क्योंकि अब नम्या की सगाई में सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे। सगाई की तैयारी जोरों शोरों पर थी। आरना अभी अपने कमरे में उस अनजान शख्स के बारे में सोच ही रही थी कि समांथा उसके पास आई। समांथा, मैम, मास्टर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है और कहा है कि प्रिशा और नम्या मैम आपका मॉल में इंतजार कर रही हैं। आप जल्द से जल्द शॉपिंग के लिए उनके पास चली जाइए। आरना, लेकिन मुझे क्यों जाना है? मास्टर ने कहा है कि आज ही सारी शॉपिंग खत्म करनी है, फिर कल से डेकोरेशन और बाकी जरूरी दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। आरना कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पास प्रिशा का कॉल आ गया और प्रिशा के कई बार आग्रह करने के बाद आखिरकार ना चाहते हुए भी आरना की बात माननी पड़ी। वैसे तो आरना का बिल्कुल मन नहीं था कि वो नम्या के साथ शॉपिंग पर जाए, परंतु वो चाहकर भी प्रिशा को ना नहीं कह पाई। अब काफी हद तक आरना का पैर भी ठीक हो चुका था, परंतु अभी भी उसके पैर का जख्म पूरी तरह भरा नहीं था और उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। कुछ देर में आरना कपड़े बदलकर सहारे के साथ नीचे आई और समांथा को कल्पना जी के साथ रहने को कहकर वहाँ से ड्राइवर के साथ मॉल के लिए निकल गई। मॉल पहुँचने के बाद आरना मेन गेट से प्रिशा को कॉल करती है और प्रिशा आरना को तीसरे फ्लोर पर ज्वेलरी शॉप में आने को कहती है। आरना अपने साथ आए गार्ड्स को बाहर रुकने को कहकर अंदर चली जाती है। इस वक्त दोपहर का वक्त था, इसीलिए यहाँ भीड़ भी कम ही थी। आरना ऊपर जाने के लिए लिफ्ट खोलती है और तीसरे फ्लोर का बटन दबा देती है, परंतु इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो पाता, एक शख्स चेहरे पर रुमाल बांधे और आंखों पर चश्मा चढ़ाए जल्दी से लिफ्ट में आ जाता है और आरना कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले ही वो शख्स ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर लिफ्ट चालू कर देता है। लिफ्ट नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग की ओर चल पड़ती है। ये देखकर आरना लिफ्ट रोकने के लिए अपना हाथ आगे करती है, मगर वो शख्स आरना का हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। आरना नाराजगी से अपना हाथ झटकते हुए, ये क्या बदतमीजी है, लिफ्ट रोको अभी, राइट नाउ। बदतमीजी अभी शुरू ही कहाँ हुई है मेरी जान, और रही बात लिफ्ट रुकने ही, तो ये तो अब नीचे ही जाकर रुकेगी जहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। वो शख्स आरना के गाल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, परंतु आरना अपने कदमों पर आ जाती है और उसे गुस्से भरी आंखों से घूरने लगती है। आरना गुस्से से, डोंट इवन ट्राई टू टच मी, इतना कहकर आरना वापस लिफ्ट को रोकने के लिए हाथ बढ़ाने को होती है कि वो शख्स आरना का हाथ पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है और आरना दर्द से करार उठती है। परंतु फिर भी आरना ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए वो अपनी दूसरी हाथ की कोहनी से उस शख्स के सीने पर वार करती है। आरना का हाथ छोड़ते हुए वो शख्स कुछ पल के लिए दर्द से छटपटा जाता है और कुछ पल बाद वो शख्स गुस्से से आरना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और आरना का सिर लिफ्ट की दीवार से जाकर टकरा जाता है। दूसरी तरफ रिदांश भी अपनी गाड़ी से कुछ देर बाद VIP एंट्री से मॉल पहुंच जाता है और प्रिशा और नम्या के पास जाता है। प्रिशा, भाई, भाभी कहाँ हैं? कहाँ है मतलब, वो तो यहाँ पहले ही आ चुकी है ना? अभी बाहर ड्राइवर ने भी मुझे बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर आ चुकी है। पता नहीं, लेकिन भाभी तो अभी तक यहाँ आई ही नहीं। नम्या कुढ़कर, तुम्हें ही शौक लगा था कि नहीं भाभी को भी बुलाओ शॉपिंग के लिए, और उस केयरलेस इंसान को कोई फिक्र नहीं, जबकि हम बेवकूफों की तरह कब से यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रिशा, दीदी बस कीजिए, भाभी बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है, जरूर कोई बात रही होगी, वरना वो अब तक यहाँ आ जाती। ओ प्लीज, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपना ख्याल न रख पाए। रिदांश गंभीरता से, अब काफी हो गया, तुम दोनों की शॉपिंग पूरी हो गई? जी भाई। रिदांश, ठीक है, तुम दोनों ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। ओके भाई। इसके बाद रिदांश अपने ड्राइवर और गार्ड्स के साथ प्रिशा और नम्या को घर के लिए भेज देता है और उनके जाने के बाद वो कई बार आरना को कॉल लगाता है, परंतु उसका फोन बंद आ रहा था। इधर उधर दुकान पर देखने के बाद भी जब उसे आरना कहीं नजर नहीं आती तो कुछ पल के लिए ही सही, मगर आज पहली बार उसके चेहरे पर आरना को लेकर परेशानी और चिंता के भाव उभरे थे।